नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस के वैलिडिक्टरी सेशन का अब का विषय है वॉइसेस ऑफ कॉन्शियंस मीडिया फॉर अ बेटर वर्ल्ड एक्शन प्लान। अंतरात्मा की आवाज एक बेहतर दुनिया के लिए मीडिया, उसके लिए आज कार्य योजना है, रेजोल्यूशन भी पास होगा और सौभाग्य की बात है कि आज इस मंच पर हमारे साथ मुख्य मेहमान के रूप में हमारे चीफ गेस्ट हैं आदरणीय माननीय श्री भ्राता राजेश धर्मानी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, वो बस पहुंच रहे हैं और मैं मंच को सुशोभित करने के लिए आमंत्रित करती हूं आज के हमारे वक्ताओं को। आज इस वैलिडिटरी सेशन के चेयरपर्सन हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता बी के डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्म कुमारीज माउंट आबू। हमारे आज के मेहमान भ्राता नारायण बारेथ जी, सीनियर जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जयपुर, राजयोगिनी बी के सरला बहन, वाइस चेयरपर्सन मीडिया विंग राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन हैदराबाद, भ्राता मुरारी गुप्ता जी, डिप्यूटी डायरेक्टर दूरदर्शन जयपुर। सभी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें तो हम समय पर इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। आज के हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आदरणीय भ्राता देवेंद्र सिंह मलिक जी, XDG प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो GOI दिल्ली, आदरणीय भ्राता डॉक्टर संतोष नायर जी, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट निम्स जयपुर, हमारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार भ्राता प्रहलाद भाई, कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ग्वालियर से पधारे हैं, आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर बिन्नी सरीन, रीजनल डायरेक्टर ग्लोबल पीस इनिशिएटिव माउंट आबू, राजयोगी भ्राता ब्रह्मा कुमार अमरचंद भाई जी, सब जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग RERF आगरा। आज के हमारे महान वक्ताओं से अनुरोध है कि मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध है कि आज इस सुंदर सुहावने समय पर हमारे मेहमानों का पुष्पों से बैज से स्वागत करें, सत्कार करें और आप सभी से अनुरोध है आप करतल ध्वनि से स्वागत सत्कार करेंगे, अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर संतोष नायर जी जयपुर से हैं, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट निम्स। आपसे अनुरोध है मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। स्टैंडिंग ओवेशन से हम स्वागत सत्कार करेंगे हमारे माननीय श्री भ्राता राजेश धर्मानी जी इस सभा में पधार चुके हैं। सभी खड़े रह करके सम्मान के साथ बहुत स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उमंग उत्साह भरी तालियों के साथ, आपके सम्मान भरी तालियों के साथ स्वागत की श्रृंखला में शब्दों से स्वागत करने के लिए इस सभा पर अपने स्वागत शब्द पुष्प बरसाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राजयोगी भ्राता बी के प्रहलाद भाई, जो ग्वालियर से पधारे हैं, हमारे मीडिया विंग के कोऑर्डिनेटर हैं। आप पिछले 3 दशकों से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। ज्ञान की ज्योति से अंधकार मिटाए, ध्यान की शक्ति से मन को सजाए, प्रहलाद भाई आए हैं यहाँ सबका कल्याण लाने, अंतरात्मा की आवाज आप सब तक पहुंचाने के लिए। आप ऊर्जा भरी तालियों से स्वागत करेंगे प्रहलाद भाई।
थैंक यू दीदी। ओम शांति। आप भी हमारे साथ एक बार प्यार से बोलें, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा का आह्वान करते हुए मंचासीन माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथि और पूरे देश भर से पधारे हमारे मीडिया के अलग अलग क्षेत्रों से सभी सम्मानीय साथी, आप सबको मेरा सादर नमस्कार और आज की इस संध्या वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज हम सब बेलेडिक्ट्री सेशन में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिसका बहुत ही सुंदर विषय जो आप देख रहे हैं सामने की वॉइस ऑफ कॉन्शियस, अंतरात्मा की आवाज, मीडिया फॉर ए बेटर वर्ल्ड, माना बेहतर विश्व के लिए अंतरात्मा की आवाज का एक सुंदर विषय को लेकर के हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मीडिया के लिए कहा जाता है कि मीडिया समाज का दर्पण होता है और वह तब जब सत्य, मूल्य और आध्यात्मिकता का प्रतिबिंब हो, तभी हम समाज को कुछ अच्छा, कुछ नया दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज का जो ये सत्र है, ये इसी विचार को पूर्ण करने के लिए, इसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज यहाँ पर रखा गया है। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से आदरणीय भाई साहब श्री राजेश धर्मानी भाई साहब का मैं हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजयोगी वीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, जो कि हमारे ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में सम्मानीय अतिथि हमारे बीच में हैं आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह मलिक जी जो कि एक्स डीजी हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका भी भाई साहब तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पधारे डॉक्टर संतोष नायर जी जो कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं निम्स जयपुर से, आपका भी भाई साहब हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही साथ डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन जयपुर से हमारे बीच में पधारे आदरणीय श्री मुरारी गुप्ता भाई साहब, आपका भी आज के इस सुंदर संध्या वेला में स्वागत अभिनंदन और वंदन है। मीडिया विंग की वाइस चेयरपर्सन आदरणीय सरला दीदी जी, बीके सरला दीदी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन वंदन है। साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट और फॉर्मर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ जयपुर हमारे बीच में पधारे हैं श्री नारायण वरेट भाई साहब, आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के शुभ अवसर पर। हमारी ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की रीजनल डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर बिन्नी बहन जी हमारे बीच में हैं, आपका भी बहन जी बहुत स्वागत है अभिनंदन है। कार्यक्रम में सब जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग आरईआरएफ से हमारे बीच में आगरा से पधारे हैं आदरणीय श्री अमरचंद भाई साहब, आपका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। और आप सभी जो पूरे देश भर से यहां पधारे हैं विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और अन्य सभी मीडिया से जो यहां पधारे हैं, आप सभी का मैं आज के इस समापन सत्र में बेनेडिक्टरी सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही साथ उन सभी भाई बहनों का भी करता हूं जो यहां तक आपको लाने के निमित्त बने, हमारे ब्रह्मा कुमारी के बीके भाई बहने, उनका भी स्वागत अभिनंदन। और मंच का कुशल संचालन कर रही हमारी आदरणीय चंदा दीदी जी जो कि हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है मीडिया विंग की, आपका भी मैं आज के इस सुंदर वेला पे, संध्या वेला पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा विश्वास है कि यहां से निकलने वाली अंतरात्मा की आवाज मीडिया के माध्यम से समाज में सत्य, शांति और सद्भावना का संदेश फैलाएगी। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अंत में दो लाइनें जरूर कहना चाहूंगा, सत्य और मूल्य ही जीवन की पहचान है, इन्हीं से बनेगा भारत और संसार महान है। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आप सभी का स्वागत, ओम शांति।
सबका स्वागत करने वाले भ्राता प्रहलाद भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता देवेंद्र सिंह मलिक जी, एक्स डीजी एमएनसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जीओआई दिल्ली से पधारे हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध है कि पहले हमारे मंचासीन मेहमानों का स्वागत करें पुष्पों से। संतोष नायर जी अभी पधारे हैं, आप सभी भी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। देवेंद्र सिंह जी जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ की वार्षिक बैठकें, G20 वित्त मंत्रियों की बैठकें, ऐसे बहुत ही सम्मानित अवार्ड से भी जिनको नवाजा गया है, कई ऐसे व्यापार और राजनयिक सम्मेलनों में आर्थिक सुधारों जैसे नोटबंदी और जीएसटी के दौरान उनका मीडिया समन्वय बड़ा ही कुशलता से अत्यंत सराहनीय रहा। अंतरात्मा की आवाज जब उठती है बुलंद, रोशन होता है समाज का हर एक कदम, बेहतर कल की ओर चलती है राह, जहां हर दिल में बसती है मानवता की चाह। ऐसे अनुभवी, दूरांदेशी, मार्गदर्शक इस आवाज को और भी बुलंद बनाते हैं, जिनके नेतृत्व और समर्पण से हम बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं। तो आपकी तालियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ प्राता देवेंद्र सिंह मलिक जी।
मंच पे विरासीन आज के मुख्य अतिथि श्री राजेश धर्मानी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, राजयोगी डॉक्टर मृत्युंजय जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्म कुमारीज, बहन बी के सरला जी, वाइस चेयरपर्सन मीडिया विंग RIRF हैदराबाद, और मंच पे आसीन महानुभाव और विभिन्न राज्यों से आए हुए मीडिया के प्रतिनिधि, आप सबको मेरा प्रणाम, ओम शांति। आज जो विषय है हमारा, अंतरात्मा की आवाज, एक बेहतर दुनिया के लिए मीडिया और कार्य योजना। एक्चुअली ये जो टॉपिक है, मुझे लगता है जो अब तक के दो दिनों में जो सेशन हुआ है उसका एक निचोड़ है, क्योंकि हमने पिछले, मैं दो दिनों से अटेंड कर रहा हूं ये सम्मेलन, इसमें विभिन्न टॉपिक्स, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट की बात हो मीडिया में, AI का रोल हो, एथिक्स की बात हो मीडिया में, इन सब के ऊपर काफी यहाँ पे चर्चा हुई, जिसमें काफी मीडिया कर्मियों ने और वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए, काफी अच्छे विचार आए हर सेशन में। तो मुझे लगता है ये जो एक बेहतर दुनिया के लिए मीडिया का जो रोल है, ये इन सब चीजों का एक निचोड़ है, और खासतौर पे आज के जमाने में जब हम ऐसी वातावरण में रह रहे हैं जहां पे डिस्ट्रस्ट की बहुत ज्यादा वो है, एक दूसरे पे विश्वास की बहुत कमी दिखाई देती है, नॉट ओनली इन मीडिया बट इन पर्सनल रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस, तो ये चीजों का असर मीडिया भी इससे बचा नहीं रह सकता। तो इन जो इस तरह की ट्रस्ट डेफिसिट सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो उसका भी जो निवारण है वो मैंने देखा कि उसके बारे में भी, ट्रस्ट को कैसे पूरा किया जाए उसके ऊपर भी काफी लोगों ने अपने यहाँ विचार प्रकट किए। मुझे लगता है कि जो ये संस्था, ब्रह्म कुमारी संस्था, इस विषय में जो कार्य कर रही है, मैं कह रहा हूँ ये जो आध्यात्मिक आपको अंदर से जो मजबूती मिलती है, जब तक पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, आप इन चीजों से नहीं लड़ पाएंगे, इन चीजों को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो दो दिवसीय सेशन है, और इसमें खासतौर पर जो मेडिटेशन का सेशन था और योग का सेशन था, इससे मैंने खुद महसूस किया दो दिनों में कि काफी सोच में बदलाव, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि ये बाहर की दुनिया में हमें ज्यादातर नकारात्मक चीजों का सामना करना पड़ता है, चाहे दुनिया को देख लीजिए, चाहे अपने देश को देख लीजिए, दुनिया में आप चारों तरफ, हिंदुस्तान के चारों तरफ देख लीजिए, रशिया में देख लीजिए, गाजा में देख लीजिए, नेपाल में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, सब देशों में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। इवन हमारे देश में भी छोटी छोटी इश्यूज को लेके, कभी मणिपुर में प्रॉब्लम आ रही है, कभी अभी हाल में लेह के अंदर हमें एक काफी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। तो इसमें जो मीडिया का जो रोल है, इसको कैसे शांतिपूर्वक तरीके से किया जाए, इसमें मेरा सुझाव ये है कि मीडिया को जो है, न्यूज जो फेक न्यूज से, आजकल सोशल मीडिया पे फेक न्यूज का बहुत चल रहा है, उसको हमें रोकना है। वेरी फैक्ट चेक्स यूनिट है हमारी, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उनके पास एक फैक्ट चेक यूनिट है। गवर्नमेंट की कोई भी खबर अगर गलत होती है तो वहां से हम चेक कर लेते हैं। ऐसे AI के बारे में बात हो रही थी कि AI के फायदे, AI का एक फायदा ये भी है कि मिस इन्फॉर्मेशन को आप चेक कर सकते हो AI के जरिए भी। हमारे पत्रकार बंधु, कोई भी खबर जाए उसको एक बारी पहले चेक कर लेना बहुत आवश्यक है कि इसका पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका आगे माहौल, जो सामाजिक और माहौल है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि चीजें तो घटित रहेंगी, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उन चीजों को कैसे प्रस्तुत करना है ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे, देश के अंदर एक शांति का माहौल बना रहे। और ये जो शांति है, ये अंदर से पहले खुद के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि ये चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम खुद को शांति प्रिय पर्सनैलिटी के तौर पे बनाएंगे अपने आप को, और उसमें जैसे योग का और मेडिटेशन का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, आपको शांति चाहिए अंदर से, एक मानसिक, एक वो ताकत चाहिए कि आप किसी भी समस्या को बड़े ठंडे दिमाग से, बिना क्रोध के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी और भावना के उसको देख सको। क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए जो रिपोर्टिंग में, या जो खासतौर पे मेरे बंधु जो रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, एडिटर्स हैं, उनकी तो जिम्मेवारी और भी अधिक बन जाती है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट ही आगे, चाहे वो चैनल में जाए, चाहे न्यूज़पेपर में जाए, और इवन डिजिटल मीडिया में भी, इन जो चीजें डाली जाती हैं उनको चेक करना बहुत जरूरी है। उनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कई दफा सवाल उठाए जाते हैं जिनकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो ये जो इश्यूज हैं, अब बात आ जाती है पूरे दुनिया की। जब आप अपने से शुरू करेंगे, एक दिए से दूसरा दिया जलेगा, दूसरे से तीसरा, इसी दिए की भांति हम इसको आगे फैला सकते हैं। एक दिन में पूरी दुनिया हमारे बस में नहीं है, ना ही हम एक दिन में उनको कोई इस तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं कि सबको एक दिन में हम समझा पाए। तो ये हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, पर इसके लिए आपको खुद इसमें अपने आप को पहले तैयार करना होगा कि भाई मैं कोई भी ऐसी खबर या कोई भी ऐसा समाचार या कोई भी ऐसी चीज सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे या ट्रेडिशनल मीडिया जो हमारे हैं, न्यूज़पेपर, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कि हम इसमें कोई ऐसी समाचार नहीं डालेंगे जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़े, वातावरण खराब हो। क्योंकि कई चीजें फिर भी होंगी, ऐसा नहीं है कि हमारे एफर्ट्स के बावजूद नहीं होंगी, होंगी, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम इस तरीके से समाचारों को आगे प्रवाहित करें ताकि उससे कोई गलत संदेश ना जाए और कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। इसके अलावा और जहां तक मेडिटेशन का मैंने बताया, योगा, योग और मेडिटेशन का रोल है, उसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जो हमारे को हेल्प कर सकती हैं विश्व में शांति के लिए। खासतौर पे जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, मीडिया के लिए कोई आचार संहिता भी बनाई जा सकती है। अभी तक हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं कि मीडिया इज सेल्फ रेगुलेटेड, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन मेरे ख्याल में कोई ऐसी हो नहीं पाती, कई दफा उस लिमिट को लोग क्रॉस कर जाते हैं। तो एक आचार संहिता भी होनी चाहिए हर एक मीडिया के लिए कि भाई उसके दायरे में रह के वो काम करे। इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे संविधान में, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसके ऊपर भी कई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। हम किसी के बारे में कोई भी खबर ऐसे नहीं छाप सकते, किसी संस्था के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, जब तक कि उस समाचार में या बात में सच्चाई ना हो। उसके लिए नहीं तो डेफामेशन के केस आजकल देखने को मिलते हैं, काफी सोसाइटीज में बढ़ रहे हैं। डिजिटल में डिजिटल अरेस्ट की खबरें आजकल आ जाती हैं, दो दो तीन तीन घंटे तक लोगों को डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। तो ये सारी चीजें इसलिए घटित हो रही हैं क्योंकि हम उन चीजों के बारे में या तो हमें जानकारी नहीं है या जानकारी है, पढ़े लिखे लोग भी इसके अंदर काफी दफा उलझ जाते हैं। तो ये चीजें हमें जागरूक, मीडिया का रोल है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करे और ताकि लोग सचेत रहें। और ऐसा कोई किसी गलत उसके अंदर ना फंसें, क्योंकि ये अब आजकल एआई का, जहां भी पिछले सेशन में एआई का मिसयूज या एआई का यूज दोनों चीज हो सकती हैं। हर एक चीज के दो पहलू हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन से पहलू को दर्शाना चाहते हैं और कैसे यूज करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज हमें ऐसा नहीं है कि कोई कमी ना हो, और कोई चीज ऐसी ना हो, ऐसी नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो। तो ये हमारी नजरिए की बात है कि हम किस चीज को देखते हैं, किस चीज को किस एंगल से हम सोचते हैं। पॉजिटिविटी अगर हमारे अंदर है, हमारी सोच सकारात्मक है और हम समाज में शांति और सद्भाव की भावना बनाना चाहते हैं, तो नेचुरली हम अच्छाई को ही हाईलाइट करेंगे। कई दफा मैंने देखा है कई चैनल्स में गुड न्यूज के तौर पे उन्होंने शुरू किया गया, जिसमें किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा अच्छे कार्य किए गए उनको हाईलाइट किया जाता है। तो ये भी एक चीज है जहां हम नकारात्मक, वो कहते हैं ना, नो गुड न्यूज इज नो न्यूज, हमेशा बैड न्यूज इज ऑलवेज सोल्ड इन द मोर, लेकिन ये ऐसा नहीं है। गुड न्यूज के बारे में भी बहुत से लोग जागरूक हैं, अच्छी लोग जानना चाहते हैं कि समाज में क्या अच्छा हो रहा है। हमेशा ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव खबरों को ही ज्यादा बढ़ावा दें, जो अच्छी खबरें हैं उनको भी आगे हाईलाइट किया जाए, फ्रंट पेज पे लाया जाए, बैक जो ऐसी नकारात्मक खबर है उनको हम पीछे ले जा सकते हैं। तो इन सब चीजों के बावजूद ट्रांसपेरेंसी की बात है, हमारे पब्लिक ट्रस्ट की बात है, अभी पिछले सेशन में बात हो रही थी अकाउंटेबिलिटी की बात है। अगर हम अकाउंटेबल हैं तो हमारे कार्य भी हम उसी हिसाब से करेंगे कि हमें पता है हमें अपने कार्य, अपने एक्शन का जवाब देना है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज आइदर सम रिएक्शन। तो वो अच्छी रिएक्शन होगी या खराब होगी हमें पता होता है। जब हम काम कर रहे होते हैं हमारे अंदर ये हमें मालूम होता है कि कौन सी चीज अच्छाई की तरफ जाएगी, कौन सी चीज का असर खराब पड़ेगा। तो ये हमारी अकाउंटेबिलिटी भी है, हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता हम एक बेहतर दुनिया के लिए मीडिया को तैयार कर सकते हैं। शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, ये बाहर से नहीं होगा, हमें अंदर से खुद को जागृत करना पड़ेगा, तभी हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को और विराम देता हूं और आप सबका मेरे को सुनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के विषय पर अपने विचार साझा करने आदरणीय प्राता डॉक्टर संतोष नायर जी, जयपुर निम्स के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं। आप बहुभाषी संवादक हैं और शिक्षा उद्योग टैलेंट डेवलपमेंट के विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने विचार साझा करते रहते हैं। आपकी कई उपलब्धियों के लिए आपको कई पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया है। आज आपसे अनुरोध है आज के विषय पर अपने अनुभव सुनाएं।
Honorable Chief Guest, Honorable Minister of Technical Education, Government of HP, Rajesh Dharmani Ji, Chairperson Rajyogi Dr. Mrityunjaya Ji, Sare Guest of Honor aur Adarniya Guest jo stage pe padhare hai aur Priya Bhai Behno jo audience mein baithe hai, A very good evening to all of you. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ब्रह्म कुमारी की पूरी टीम को कि इन्होंने इतना भव्य इवेंट आयोजन किया जो नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 2025 जो 5 दिन का इवेंट है और काफी सेशंस के थ्रू उन्होंने काफी इंसाइट्स दिए। जितने भी गेस्ट आए थे, काफी बच्चे भी यहां पे आए थे मास कम्युनिकेशन के, जिनको खूब ज्ञान मिला और उनको एक राह मिली कि मीडिया में आगे फ्यूचर में क्या होना चाहिए और अभी क्या इंप्रूवमेंट्स हम उसमें ला सकते हैं। नाउ ये वैलिडिटी सेशन विच इज ऑन वॉइसेस ऑफ कॉन्शियंस मीडिया फॉर अ बेटर वर्ल्ड एक्शन प्लान। सो हम सब जानते हैं कि आज के तारीख में मीडिया जो है वो सबसे पावरफुल बाय द सेम टाइम सबसे डेंजरस टूल है जो या तो किसी को बना सकता है या किसी को तोड़ भी सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्टेट हो, एक कंट्री हो या फिर पूरा वर्ल्ड क्यों ना हो। आज की तारीख में आप देख रहे हो कि नेपाल में कितना अनरेस्ट हो रहा है, बांग्लादेश में ऑलरेडी हो चुका है, यूके में काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और धीरे धीरे दुनिया के सारे जो बड़े बड़े राज्य हैं, बड़े बड़े देश हैं, वहां पे काफी दिक्कतें भी आ रही है। बट ये सारी चीजों में मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और मैं काफी खुश हूं कि ब्रह्म कुमारी ट्रस्ट ने इतना बड़ा 5 दिन का आयोजन किया जो बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। सो जो मुझे बोला गया था कि एक्शन प्लान क्या होना चाहिए टू मेक मीडिया और टू क्रिएट अ मीडिया विच कैन क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। सो मेरे हिसाब से मीडिया जो है उसको 8 मेन जो पॉइंट्स है उस पर ध्यान देने की काफी जरूरत है। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज मीडिया हैज टू बी पर्पस ड्रिवन। जैसे ब्रह्म कुमारी में भी सिखाया जाता है कि आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है, आपके लाइफ का मोटो क्या है, आपके लाइफ का पर्पस क्या है। अगर आपको अपने लाइफ का पर्पस पता चल जाता है सो आपका ऑलमोस्ट 80% जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आपका ध्यान जो है इधर उधर भटकता नहीं है, आप बहुत ही क्लियर हो कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहां है और कितनी भी नेगेटिविटीज आजू बाजू क्यों ना हो फिर भी आपका जो लक्ष्य है, आपका जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ लक्ष्य पे रहता है। वही तरीके से मीडिया जो है, मीडिया हैज टू बी पर्पस ड्रिवन और वो जो पर्पस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सही पर्पस है गलत पर्पस है, वो हमें उन्हें डायरेक्ट करना, उन्हें डायरेक्शन देना वो बहुत बहुत जरूरी है। आप सबको पता है कि मीडिया जब इंडिपेंडेंस टाइम था तो आजादी दिलाने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि ब्रिटिशर्स काफी चीजें कर रहे थे लेकिन वो आवाम तक जा नहीं रहा था, वो कॉमन पीपल तक जा नहीं रहा था, राइट? क्या चीजें हो रही है वो किसी को पता नहीं चल रहा था। और तब मीडिया का जो रोल था कि जो सच्चाई है, जो सच्चाई अंदर चार दीवारों के बीच में हो रही है, जेल में हो रही है, वो सारी चीजें बाहर जनता को दिखाना और पूरे दुनिया को दिखाना कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, ताकि हमारे सपोर्ट में पूरी दुनिया आए, सिर्फ इंडियंस ना आए लेकिन बाहर के जो देश है वो भी एक एकजुट होकर आए कि नहीं ये जो हो रहा है इंडिया के साथ वो गलत हो रहा है। सो ये जो पर्पस है, ये पर्पस सिर्फ मीडिया में जो प्रोफेशनल्स है उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे स्कूल में है, जो बच्चे कॉलेज में है, उनको पहले से ही उनका एक फाउंडेशन बनाना जरूरी है कि मीडिया का एक्चुअल पर्पस क्या है। मीडिया का पर्पस सिर्फ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना नहीं है, सिर्फ टीआरपी बनाना नहीं है, सिर्फ उनके सब्सक्राइबर्स बनाना नहीं है, लेकिन उनका पर्पस बहुत बड़ा है, वो देश को बनाना है, राइट? देश को बिल्ड करना है, और वो देश बिल्ड होगा हमारे युवा के थ्रू, हमारे जनता के थ्रू, जब उनको सही चीजें बताएंगे, सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे, और जो सत्य है वो सत्य हम दिखाएंगे, तभी ये देश बन सकता है। तो पहला पॉइंट है कि मीडिया को पर्पस ड्रिवन होना बहुत बहुत जरूरी है। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग काफी प्रोफेशन में आ जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि ये प्रोफेशन का पर्पस क्या है। और जो लोग बोलते जाते हैं, जो एम्प्लॉइज बोलते जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बोलता जाता है, वो हम करते जाते हैं बिना सोचे समझे कि ये सही है या गलत है। तो इसके लिए हमको पर्पस डिफाइन करना बहुत बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है, मीडिया को एथिकल होना बहुत जरूरी है। नो डाउट आपका टीआरपी बनाने के लिए आप सही चीज दिखा रहे हो, गलत चीज दिखा रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है रिपोर्टर्स को अपना भी काम दिखाना पड़ता है और उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप पेशेंस लूज करके कम टाइम के अंदर ज्यादा जल्दी ग्रो करने के चक्कर में आप एथिक्स नहीं भूल सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में शायद आपको फायदा दिला सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पूरे देश को डुबा सकता है, पूरे दुनिया को डुबा सकता है। इसके लिए मीडिया को एथिकल होना बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है, मीडिया रेस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप चीजें दिखा रहे हो, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, उसकी पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो दिखाने के बाद क्या चीज हो सकती है, क्या रिपरक्यूशन आ सकते हैं, क्या रिएक्शन हो सकते हैं, वो रिएक्शन की भी जिम्मेदारी मीडिया को लेना बहुत जरूरी है। आज आपने कोई चीज को रोमांचक, कोई न्यूज को रोमांचक बनाने के लिए, एक्साइटिंग बनाने के लिए आपने काफी चीजें दिखा दी और इंटरेस्टिंग भी हो गया, एंटरटेनमेंट भी हो गया, लेकिन उससे देश को क्या नुकसान हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना जरूरी है। चौथा पॉइंट जो है वो मीडिया को एफिशिएंट और एरर फ्री बनाना बहुत जरूरी है। तो जो हमारे प्रीवियस गेस्ट थे देवेंद्र जी, उन्होंने काफी बताया कि एआई जो आज है, आज के तारीख में एआई हमें अच्छी चीजें भी दे सकता है और बुरी चीजें भी दे सकता है, लेकिन एआई के सपोर्ट से हम काफी फेक न्यूज जो है वो हम बैन कर सकते हैं, काफी फेक न्यूज को पब्लिश होने के पहले ही हम रियलाइज कर सकते हैं और उसके पहले ही हम सही खबर जनता को पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा एजुकेट करना, टाइम कम है, मैं जस्ट दो तीन पॉइंट में बता दूंगा कि एजुकेशन जो है वो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक बच्चों को एजुकेट करना, लोगों को एजुकेट करना और उनको एम्पावर करना वो बहुत बहुत जरूरी है और ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा काम है जो मीडिया को डेफिनेटली करना चाहिए। एट द एंड मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, द मीडिया हैज टू बी मोर क्वालिटेटिव एंड वैल्यू बेस्ड रैदर देन बींग फेक एंड क्वांटिटेटिव। आज के दुनिया में जहां पर डिजिटल इतना पेनिट्रेट हो चुका है, आज के तारीख में कितने लोग हैं जो बैठे बैठे तीन तीन चार चार घंटे तक कंटिन्यूसली सोशल मीडिया देखते रहते हैं और इतनी गलत खबरें देखते रहते हैं और गलत खबरें देख के अपने विचार बनाते हैं और एक्शंस उसके हिसाब से क्रिएट करते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। सो मेरा सारे मीडिया प्रोफेशनल्स को एक ही विनंती है कि ट्राई टू मेक मीडिया मोर वैल्यू बेस्ड एंड क्वालिटेटिव फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
शुक्रिया भ्राता संतोष नायर जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता मुरारी गुप्ता जी, जयपुर से पधारे हैं, डिप्यूटी डायरेक्टर दूरदर्शन, संपादक डीडी न्यूज। आपने 3 पुस्तकें भी प्रकाशित की है, उपन्यास, ट्रैवलॉग, कहानी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते हैं। सामाजिक विषयों पर आप लगातार लेखन करते रहते हैं। आपके जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं और सुनेंगे भ्राता मुरारी जी को।
आदरणीय मंच और सुधी श्रोताओं, मैं इस पूरे मंच में सबसे अल्पज्ञ हूं। आज का जो विषय है उस पर आने से पहले मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी से अपनी बात शुरुआत करता हूं। 15वीं शताब्दी का ये समय था। आपको इतिहास के यदि अगर आप विद्यार्थी हैं तो उस समय जो घोर विपरीत परिस्थितियां थी, मुगलों का आक्रमण और निराशा में डूबा हुआ समाज, इसके बावजूद गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो काम किया जो आज तक हम लगभग 600 वर्ष रामचरितमानस को लिखे हुए हो गए और आज हर घर में रामचरितमानस पढ़ा जाता है, गाया जाता है। उन परिस्थितियों के बावजूद तुलसीदास जी इतना बड़ा ग्रंथ की रचना कर सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि हमारे अंदर, हम जब भारत की बात करते हैं तो हमारे अंदर इतनी सकारात्मकता है कि हम विपरीत हालात में भी, कैसी भी परिस्थिति हो, हम अपने समाज, जिसको फिनिक्स चिड़िया की आपको कहानी याद है, हम अपनी राग से भी पैदा हो जाते हैं। तो ये जो सकारात्मकता है हमारे भारत की मूल्यों में, भारत के समाज में, हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन संस्कृति में जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो जो मूल्य है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो मुझे लगता है कि हमको बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वातावरण अभी इस तरह का है कि नकारात्मक खबरें समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया में बहुत तमाम तरह की चीजें आती हैं, लेकिन बारेट सर से हमारी बात लगातार चर्चा होती रहती है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण वो देते हैं कि हमारे जितना लचीलापन, यानी कि भारत और हमारी जो परंपरा है उसमें जो लचीलापन है, उसमें जो सहिष्णुता है, वो हमारी ताकत है। कि जितना जो चीज टाइट होगी, जितनी सख्त होगी, वो जैसे दबाव पड़ते ही वो टूट जाएगी, लेकिन हमारे अंदर जो सहिष्णुता है, हमारे भीतर जो लचीलापन है, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक इस तरह की घटना है कि अंग्रेज जब भारत में थे तो उनके मन में बड़ा प्रश्न था कि भारत की जो ये संस्कृति है, सभ्यता है, इतने आक्रमण के बावजूद लगभग 1500 वर्ष से अलग अलग तरह के आक्रमण हुए, कभी तुर्क, कभी मुगल, कभी अंग्रेज, तरह तरह के आक्रमण भारत में झेले, इसके बावजूद ऐसी क्या बात है हमारे भीतर कि हम आज तक जिंदा हैं। तमाम जो देश थे उस समय वो कहीं आज कहीं जिन उनका अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, लेकिन ऐसी क्या बात है हमारे अंदर कि हम अभी तक जिंदा हैं और पूरे विश्व को हम जिसको कह सकते हैं सिरमौर के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया हमारी ताकत को पहचानती है, पूरी दुनिया हमारे भीतर जो एक आध्यात्मिकता है उसको ग्रहण करने के लिए दुनिया भर से यहां आती है। ब्रह्म कुमारी सबसे बड़ा उदाहरण है, पूरी दुनिया के अनुयायी हमारे ब्रह्म कुमारी में आते हैं, उनको शांति महसूस होती है। तो कुछ तो बात है हमारे भीतर, वो क्या बात है, वो हम इसको किसी मंदिर से या किसी मस्जिद से उससे नहीं जोड़े, हमारे भीतर जो मूल्य हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे, वो मूल्य ही हमें हमारी ताकत है और उस मूल्यों के कारण ही हम आज यहां खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो सकारात्मकता की हम बात करते हैं मीडिया के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं हमारी एक ताकत है जो हम अभी तक उसके बावजूद जिंदा है। मैंने प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी शुरुआत की थी, तो वो जो दौर था वर्ष 2000 का, निश्चित रूप से उस समय इतनी नकारात्मकता प्रिंट मीडिया में नहीं थी। ये जो टीआरपी और विज्ञापनों का वैसीपन है वो पिछले 10-12 सालों से निश्चित रूप से आया है। कहते हैं कि हर तरक्की अपने साथ कुछ अंधेरा लेके आती है। जैसे कोई बिल्डिंग 20 मंजिला बिल्डिंग खड़ी होगी तो उसके बगल में उसका अंधेरा होगा ही होगा। तो हमको वो सूरज कहीं ना कहीं से निकालना होगा, जो अंधेरा है तरक्की के पास में, जो अंधेरा है उसको कहीं कहीं दूर करने के लिए जो छोटे छोटे दिए हैं झरों के, वो हमको टिमटिमाने होंगे। उसका बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, खासकर अलग अलग इंस्टीट्यूट जो जहां चल रहे हैं, उन जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनको हम अपनी नई चीजों के माध्यम से, नई जो नागरिक पत्रकारिता की हम अगर बात करें तो उसके माध्यम से हम उनको फीड दे सकते हैं कि आप नई पीढ़ी हैं, आपके माध्यम से हो सकता है कि आज का जो दौर है वो कहीं ना कहीं समाप्त होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो नकारात्मकता हमारे, हम जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिसकी चिंता कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी समाप्त होगी, ऐसा मुझे मेरा विश्वास है। मैं रेडियो में बहुत वर्ष तक रहा हूं। आपने यदि, आप सब लोग रेडियो से वाकिफ रहे होंगे, रेडियो ऐसा माध्यम है जिसमें नकारात्मकता लगभग शून्य है। मैं विद भारती की बात करता हूं, मैं ऑल इंडिया रेडियो में रहा हूं, तो सुबह की शुरुआत रामचरितमानस से होती है। इससे बढ़िया क्या पॉजिटिविटी हो सकती है रेडियो की। उसमें लोक रंजन है, लोक रंजन आपको इतना तय है कि आपको एक नेगेटिव वाइब्रेशन की तरफ नहीं जाने देगा। तो मुझे लगता है कि हमको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है उसको एक मोटिवेट करके हम एक नई दिशा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता मुरारी गुप्ता जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हैदराबाद से पधारी मीडिया विंग की वाइस चेयरपर्सन आदरणीय राज योगिनी पी के सरला बहन जी। हर विचार को सींचेंगे कर्मों की बुनियाद से, साथ मिलजुल कर बनाएंगे एक नई सौगात से। सरला बहन हमारे समक्ष रेजोल्यूशन ले आ रही हैं, तो उनका रेजोल्यूशन एक्शन प्लान हमें करेगा प्रेरित। चलो उठाएं कदम, बनाएं समाज को सुंदर और विकसित। आदरणीय सरला बहन।
आपको तकलीफ दे रही है बार बार। ओम शांति। सर्वप्रथम इस दुनिया को चलाने वाले हमारे बहुत बहुत प्रिय परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा पिता को इस हमारे इस बहुत ब्यूटीफुल सभा में उपस्थित होने के लिए इनवाइट करते हुए आज की इस बेलेडिक्टरी सेशन में एक बहुत महत्व एक्शन प्लान बनाने जा रही है। आप सबसे इसका स्वीकृति भी करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारा मोस्ट रिस्पेक्टेड राजेश धर्माने जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टेक्निकल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश, एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड राजयोगी मृत्युंजय भाई जी आवर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, एंड मालिक भाई जी द अर्लियर डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दिल्ली, देन गुप्ता जी, मुरारी गुप्ता जी, नारायण बरेत जी, संतोष नायर जी, प्रहलाद भाई, हमारे प्यारे बहने बिन्नी, डॉक्टर बिन्नी सरीन, चंदा बहन एंड आमिर चंद भाई जी, एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऐसे भगवान ऐसे ऊपर से इस दुनिया को देखे तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इतिहास में सुने हैं, जब कृष्ण जी ने अर्जुन को विश्वरूप बताया तो सहन नहीं कर पाए, तो दुनिया के हालत ऐसे ही है। क्योंकि हम मीडिया वाले जानते हैं और मानते हैं कि दुनिया की हालत बहुत बहुत बिगड़ चुकी है, इसलिए आप सबको यहाँ बुला के इसको ट्रांसफॉर्म करने और मोड़ने के लिए आपको कुछ विचार हमारे तरफ से सुनाए और आपसे आपका दुनिया की हालत ले रहे हैं। तो दोनों को मिला के एक बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करके एक एक्शन प्लान बनाई गई है। इसमें मैं एक हमारे पूर्वजों की स्मृति बार बार आ रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को का फाउंडर के उद्देश्य क्या है, कि इस दुनिया भगवान के सपोर्ट से एक सुनहरी दुनिया बनावे। तो ही हैज ओवर 33 इयर्स उन्होंने कितना मेहनत करके उनके जीवन को एक स्टैंडिंग एग्जाम्पल बना दिया डिसिप्लिन और वैल्यूज के उनको उतार के। वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन को कई साल हमारे अर्लियर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर दादी प्रकाश मणि जी, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर अ फ्यू थिंग्स बिकॉज इट इज क्वाइट पर्टिनेंट दैट दीज आर रियली रिलेवेंट टू वॉट वी हैव बीन डिलिबरेटिंग फॉर द 3 days। दादी प्रकाश मणि जी आउट ऑफ विजडम शी हैज हेल्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in bringing this organization to what it is today. अब्दुल कलाम जी जैसे बड़े बड़े महान विभूतियाँ इस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट किए थे। जब अब्दुल कलाम जी इस उनके दौरा विजिट पर हमारे दादी प्रकाश मणि जी से जब मुलाकात हुआ तो पूछा दुनिया में कई देश मुस्लिम्स का हो क्रिश्चियंस का हो इंडिया को हमला किया या इन्वेड किया है। कई बार इंडिया हैज विटनेस सो मेनी इन्वेजन्स बट इतिहास ऐसा नहीं बताती कि इंडिया हैज इन्वेडेड और इंडिया हैज गिवन सफरिंग दुख किसी को नहीं दिया। क्यों? व्हाट इज योर विजडम ऑफ वर्ड टू मी? देन दादी जी ने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया क्योंकि तीन बातों में हम सौभाग्यशाली कहना, एक तो हम भारत में पैदा हुआ है क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और दूसरा भगवान भारत का कल्चर को डेवलप करके आप जैसे महान विभूतियों को बुला के ट्रांसफॉर्म करके, क्योंकि इस एक्शन प्लान में मीडिया को बहुत मान देते हुए लाइक द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट टू मीडिया टू चेंज द वर्ल्ड। तो दादी जी ने बताया कि भारत माता कहते हैं, माता तो किसी के ऊपर हमला करना, किसी को दुख देना या किसी के ऊपर इन्वेड करना ये भारत को शोभता नहीं है, इसलिए भारत इज महान। द सेकेंडली आई रिमेम्बर द ग्रेट वर्ड्स लाइक यू फॉर सेवरल ईयर्स आई हैव बीन लिसनिंग टू ग्रेट पीपल हु हैव हेल्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन टू द हाइएस्ट लेवल। दादी गुलजार जी इज ऑल्सो एन अर्लियर चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। ओनली वन अ लिटिल expression of hers, sharing of hers has brought transformation to so many, and I'm also one of that. The important slogan she shared with us is kisi ko na dukh do na dukh lo. It always just reckons in my mind that always, it may be around 20-25 years back, this event happened. Na dukh do, she used to speak on the dais, maybe the dais which I am sharing. She said, na dukh do, na dukh lo. So this has really changed so many people's life. The same way, I thought it is pertinent that I remember them. Today's action plan, we have devised 5-6 little points in that. We have, the Brahma Kumaris have organized this on the theme, the canopy theme is promoting peace, unity and trust. In that, we have held 5 Rajyoga meditation sessions, 2 plenary sessions, 1 inaugural session, 1 valedictory session, 1 reception and 3 one-to-one talks. In that, we have deliberated very important sessions shared by wonderful experts in media and allied professions. So, can I... Chanda Ben, go stand up. Chantanu Bhaiya, khade hoke karna. I think all of you have this action plan with you, all of you have. So only 2 points will be read out to you. Kindly second your opinion. We would call 2 from, 1 from out of the audience, then 1 from the honorable dais to second it. The conference, upon deliberations, hereby formulate formulates an action plan for emulation. We are responsible for the current state of affairs in the world. Hence, we alone are accountable to transform it. Realize that transformation starts with transforming the self. Therefore, we advise ourselves to make best possible efforts to ensure accuracy, avoid fake news, and respect dignity of other human beings, institutions, different cultures, among others, and reporting. By following code of conduct for accuracy, transparency, fairness, and accountability. Second point, to make efforts for shedding personal weaknesses like anger, greed, and lust, etc., through spiritual power for gaining benefit of maintaining cordial and ideal relationships for a peaceful and happy life. The very purpose of calling all of you is to take from here abundance of energy and make your life a very happy and purposeful and peaceful life. Thank you so much. And before that, I would request Malikji to kindly, Devinder Singh Malikji, to kindly second this action plan. And also from the audience, Madhukar Dwivedi ji, to kindly second this action plan. Hindi may be padhai jayega. Aye. Devinder Singh Malik ji, we would request you to kindly second this action plan. Yahan aake second.
This action plan, which is prepared by Prajapati Brahm Kumari Ishwariya Vishwavidyalaya after 5 days of national media conference on the role of media for promoting peace, unity and trust at Shantivan campus at Abu Road, Rajasthan. I endorse the action plan prepared, 5-6 point action plan prepared after this conference. I'm really appreciate this point, recognizing the power of human mind, that wars begin in the minds of people, so also peace shall begin in the minds of people. So that is a very good quote, I think, which we must carry with us and accordingly act. All other points also I endorse them. Thank you.
Sammanya Manch or Sammanya Mitro. Shanti, Ekta, Sadbhav, इन सब को लेकर के जो 3 दिन 4 दिन से हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद जो कार्य योजना ने मूर्त रूप लिया है, वो पत्र आप सब लोगों के हाथ में पहुंच चुका है। मैं उसका समर्थन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपने जीवन में उसको आत्मसात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय भ्राता नारायण बारेठ जी, सीनियर जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जयपुर से पधारे हैं। आप जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व सूचना आयुक्त जो प्रख्यात विश्वविद्यालय राजस्थान के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में प्रोफेसर रह चुके हैं। इनके कार्यालय में इनका नाम बीबीसी न्यूज तथा रेडियो राजस्थान से भी जुड़ा रहा। ऐसे भ्राता नारायण जी से अनुरोध है कि आज इस मंच पर आकर अपने महान विचारों से हमें अवगत कराएं।
रूह की बात है, मिनट मेरे पास 7 है, बिना औपचारिकता और तकल्लुफ के बात कह रहा हूं। मैं आपकी अंजुमन में न धूप हूं, न छाया हूं, न कोई साया हूं, मैं अपने अल्फाज को आत्मा का बयान बना के लाया हूं। महात्मा गांधी पत्रकार थे जो कहते थे कि दुनिया की सारी इंसाफ की अदालतों के ऊपर भी एक अदालत है, वो है आपकी अंतरात्मा की आवाज। और सूरदास एक कवि थे जिनके आंखें नहीं थी पर उन्हें बहुत दिखता था, वो पूरी दुनिया देखते थे अपने मन की आंखों से। हेलन केलर जो एक अंध और बधिर दार्शनिक थी, वो कहती है कि मुझे अंधेपन से भी खराब लगता है, इंसान के आंखें और उसको दिखता नहीं है, और जब दिखता नहीं है तो तब नहीं दिखता है जब उसकी आत्मा मर जाए। एक मरी हुई आत्मा का मीडिया समाज का भला नहीं कर सकता। मैं जब गांव कस्बों में जाता हूं, मुझे लोग एक शायर के जरिए पूछते हैं कि समंदर तेरी खामोशियां कुछ और कहती है, साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है, मेरे शहर की आंखों ने मंजर कुछ और देखा था, मीडिया तेरी सुर्खियां कुछ और कहती है। हम सत्य सच कहना बंद कर चुके हैं। महात्मा गांधी की रूह एक बार भारत में घूमते हुए पूछ रही थी एक व्यक्ति से कि यहां कितने अखबार निकलते हैं। उसने कहा कि रिकॉर्ड में 12,000 है, वैसे 20,000 दैनिक अखबार निकलते हैं। उन्होंने पलट के पूछा, मैं अखबार के बारे में पूछ रहा हूं, अखबार कितने हैं? और फिर मैं कहूंगा कि उन आंखों को तरस थी पर कालिक कोई काजल नहीं होता, प्यासी धरती आसमां को तरसती रही पर धुआं कोई बादल नहीं होता, कागज तो रोज छपते हैं, हर कागज अखबार नहीं होता है। जब महात्मा गांधी ने 42 में आंदोलन का आगाज किया और अंग्रेज ने ऑर्डर निकाला कि अखबार बिना दिखाए में नहीं छापेंगे, रामनाथ गोयनका ने एक संपादकीय लिख के अखबार बंद कर दिया कि अगर आपकी इजाजत से छापना है तो वो कागज हो सकता है, वो अखबार इंडियन एक्सप्रेस नहीं हो सकता। विलियम बनबर्ग अमेरिका में विज्ञापन के बादशाह थे, जनक थे। जो विज्ञापन का काम करते थे वो कहते थे कि वी ऑल एज प्रोफेशनल्स यूज मीडिया, वी आर शेपर्स ऑफ आवर सोसाइटी, वी कैन ब्रुटलाइज सोसाइटी, वी कैन वल्गराइज सोसाइटी एंड वी कैन टेक इट टू हायर अप्स। अर्थात उन्होंने कहा कि हम सभी पत्रकार के नाते मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, हम अपने प्रयोग से अपने मीडिया के जरिए समाज में क्रूरता का भाव भर सकते हैं, अश्लीलता से सरोबार कर सकते हैं और हम इसको और कहीं ऊंचाई पर भी ले जा सकते हैं। तो इस वक्त तो हमने कुछ उल्टा ही किया है। मैं आपकी इस महफिल में कहना चाहता हूं कि मीडिया खौफ का कारोबार चला रहा है, डर की तिजारत सबसे बड़ी है। किसी को धर्म का डर है, किसी को जाति का डर है, किसी को दूसरे राष्ट्र का डर है, किसी को अपने घर में डर है, किसी को समुदाय का डर है, और ये डर का कारोबार आज दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार है। 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार है भारत में विजुअल सर्विलेंस का। जगह जगह लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो, वो समाज अच्छा नहीं होता जो कैमरे की नजर से अपना ईमान लेके चलता हो। और खौफ का कारोबार है कि भारत में 1,20,000 प्राइवेट गार्ड हैं, 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की। हर आदमी को खौफ है, बस्तियों में गेट लगने लग गए हैं कि मीडिया ने ऐसा किया, और संसार भर में मीडिया युद्ध का उन्माद पैदा कर रहा है। हम भूल गए कि पहले विश्व युद्ध में 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे, दूसरे में 7 करोड़ लोग मारे गए थे, और उस युद्ध में भागीदार रहे आइजनहावर ने, वो खुद राष्ट्रपति बने और कहा एक भी बंदूक की गोली आती है तो किसी के मुंह का नेवाला छीन के आती है, एक भी अगर युद्ध पोत लॉन्च होता है तो किसी गरीब के ठंड से ठिठुरते कपड़े का हिस्सा लेकर आता है। इसलिए मीडिया मेहरबानी करके उन्माद उत्तेजना पैदा नहीं करे, अध्यात्म में बचा सकता है। मैं अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं अपनी रूह को गवाह बनाकर कह रहा हूं, और जोखिम के साथ कह रहा हूं कि मैं सच नहीं कहूंगा तो पीढ़ियां मुझसे पूछेगी कि जब एक लड़ाई लड़ी जा रही थी तुम कहां थे। मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, और इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत विशेष धन्यवाद, करतल ध्वनि से धन्यवाद। और अब समय है, मैं आमंत्रित कर रही हूं आज के हमारे चीफ गेस्ट, मुख्य मेहमान आदरणीय श्री माननीय राजेश धर्मानी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ HP। कदम बढ़ाते रहे निरंतर उमंग से, देश और प्रदेश सजे आपके संग से, हिमाचल की हर एक घाटी हर एक मैदान बने विकास का अनमोल अनुपम स्थान। आइए हाथ जोड़कर जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करें, सम्मान करें और उनसे अनुरोध है कि प्रेरणादायी शब्दों से हम सब में उमंग उत्साह भर दे। राजेश भाई,
धन्यवाद बहन जी। ओम शांति। मैं धन्यवाद करूंगा प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के उन सब आयोजकों का जिन्होंने इस नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका दिया। डायस पर बैठे डॉक्टर मृत्युंजय जी, जो राजयोगी बीके जी हैं, और अन्य सभी उपस्थित डिग्नेटरीज, और सामने बैठे सभी हमारे मीडिया से जुड़े हुए साथीगण, बहुत अच्छा विषय नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे इस पर आपने चर्चा की और आज इसका एक्शन प्लान 5 पॉइंट एक्शन प्लान अभी तैयार करके आपसे अप्रूव कराया। आज दुनिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं और उनका समाधान निकालने के लिए भी हमारे पास ताकतें हैं, लेकिन उसको आपकी जरूरत है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए। समाज और दुनिया का रुख किस तरफ ले जाना है ये आपके भी हाथ में, आपकी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सब जानते हैं कि मीडिया एक जरिया है लोगों को सूचना प्राप्त करने का। जो आप प्रकाशित करते हैं, जो दिखाते हैं, जो सुनाते हैं, उसको लोग जो है सच मानते हैं। आज की दुनिया में पहले की दुनिया से अंतर है। पहले मीडिया सिर्फ प्रिंट मीडिया तक सीमित था, फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। जहां सूचना प्राप्त करना आसान हुई है, वहां पे सही सूचना प्राप्त करना ज्यादा मुश्किल हो गई है। ये पता लगाना मुश्किल है एक साधारण व्यक्ति के लिए कि कौन सी न्यूज सही है, कौन सी न्यूज सही नहीं है। हम देखते हैं कि कई फेक न्यूज चलाई जाती हैं, कुछ पेड या प्रमोशनल न्यूज होती हैं, कई बार आधी सच्चाई दिखाई जाती है वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। कई हस्तियों को या कई संस्थाओं को जो उनकी वास्तविकता नहीं है उससे ज्यादा उनको बेहतर दिखाया जाता है, और जो बहुत अच्छा काम करने वाली संस्थाएं हैं उनको कहीं नेशनल मीडिया स्ट्रीम में जगह नहीं मिलती है। हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई गतिविधियों को ही उदाहरण मान लें तो आप देखते हैं कि बहुत सारे अच्छी कार्यशालाएं, बहुत सारे अच्छे सामाजिक कार्य, और सबसे बड़ी बात है कि एक साधारण व्यक्ति के अंदर किस तरह से बदलाव लाना है, उसको एक बड़े कॉज के साथ जोड़ना है, इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन, इससे बड़ा योगदान समाज के लिए क्या हो सकता है। लेकिन इसके लिए कहीं नेशनल मीडिया मेन स्ट्रीम में मैंने तो आज दिन तक जो है कभी प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का कोई बड़ा जो है प्राइम टाइम पे उस स्लॉट में इनको दिखाया नहीं गया। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं हमारे देश के अंदर हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन जो हमारा प्राइम टाइम है उसको डोमिनेट कौन करता है। आप उन न्यूज को देखें तो उसमें अच्छे कार्यों के लिए जगह नहीं है। हम एक बार कुछ विधायकों की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन विधायक साहब का मुझे नाम नहीं आ रहा, मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो पहले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था 2005 में भारत सरकार ने लाया, तो उस समय मैंने उस पर विधानसभा के अंदर जो है चर्चा लाई, लेकिन चर्चा का सिर्फ छोटा सा एक कॉलम था जिसमें उस चर्चा के बारे में जो है थोड़ा सा दिखाया गया और हालांकि काफी विधायकों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, मैंने उसके लिए काफी मेहनत करी थी, लेकिन जो मैं उसकी आउटकम चाहता था मीडिया के जरिए लोगों तक वो बातें पहुंचे, उतना अपेक्षित जो मेरा अपेक्षा थी उसके मुताबिक मुझे उसमें कवरेज नहीं मिली। लेकिन कुछ समय बाद विधानसभा के अंदर किसी और बात को लेकर बहस हो गई और मैंने जो है अपना जूता निकाल के सामने दिखाया और उसको इतनी ज्यादा कवरेज मिली कि चाहे वो प्रिंट मीडिया था मैं फ्रंट पेज पे छपा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्राइम टाइम पे जो है वो दिखाया गया, और उसके बाद मीडिया मेरे को ढूंढता था कि ये कुछ ना कुछ कमाल करेगा और हमारे लिए कुछ चटपटी खबर मिलेगी। अगर हमारा ये आधार होगा किसी इवेंट को प्रमोट करने का तो मुझे नहीं लगता कि उससे हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसी तरह के एक तो छोटा सा उदाहरण है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको नहीं दिखाना चाहिए लेकिन हम उनको दिखाते हैं। और तीसरा, जो हमारा सोशल मीडिया है या डिजिटल प्लेटफॉर्म बाकी हैं, उनको कैसे उनको रेगुलेट करना है कैसे, क्योंकि उसके हम जो मीडिया हार्डकोर मीडिया से जुड़े लोग हैं उनसे तो हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो सोशल मीडिया पे तो हर आदमी आज पत्रकार है, हर आदमी आज ब्लॉगर है, उसको कैसे आप जो है उन तक बातें पहुंचाएं कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे जो है जो एक मीडिया रिपोर्टर का आप काम कर रहे हैं, रिपोर्टर ना होते हुए भी उसका क्या असर जो है समाज पे पड़ेगा उसको भी आप समझें। जो भी पब्लिक डोमेन कोई चीज आती है उसका सही या गलत असर जरूर पड़ता है। हम एक लार्जर गोल को लेकर चलें कि हमने जो काम करना है क्या किस लिए करना है। अभी भाई साहब जो नारायण बरेश जी थे ने बहुत अच्छी बात कही महात्मा गांधी जी के बारे में कि अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते थे कि हम कोई भी निर्णय लें, निर्णय लेते समय हम ये जरूर सोचें कि जो हम निर्णय ले रहे हैं उससे उस व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ेगा जो आज तक सबसे दीनहीन स्थिति में हमने देखा है, जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है। सबसे आसान काम है, चाहे मीडिया है चाहे पॉलिटिशियन है चाहे सोशल एक्टिविस्ट हैं, पावरफुल लोगों का, पावरफुल ग्रुप्स का, जो शक्तिशाली समूह हैं उनकी लड़ाई लड़ना सबसे आसान काम है। और सबसे मुश्किल काम उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ना है जिसको ये भी मालूम नहीं है कि उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। कई ऐसे समाज में वर्ग हैं जिनकी आप लड़ाई लड़ेंगे उनसे आपको समर्थन नहीं मिलेगा, उनकी आपको सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा फिर भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ें। हम कोई अगर फैसला लेते हैं तो हम ये फैसला लेते इसमें ये जरूर सोचें कि जो सामने व्यक्ति प्लीड कर रहा है इसको तो हम जरूर ओबलाइज करें, लेकिन इसको ओबलाइज करते करते बाकी जो समाज है और खास करके जो गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज जो सेक्शन है सोसाइटी का, उसके ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा। और आज हम देखते हैं कि ये सिर्फ मीडिया की हालत नहीं है, चाहे हम गवर्नमेंट सेटअप में देखते हैं, यहां तक कि जुडिशरी में देखते हैं, वन साइडेड जो है वो फैसले आते हैं या लिए जाते हैं, चाहे सरकारों द्वारा है चाहे बाकी जो अथॉरिटीज हैं इंक्लूडिंग जो हमारे कोर्ट्स हैं उसमें भी कई बार बैलेंस जो है वो फैसले नहीं लिए जाते हैं। उसका असर उस वर्ग के ऊपर क्या पड़ेगा जो आपके पास प्लीड नहीं कर रहा है, ये हमें जरूर जो है सोचना है, तभी मैं समझता हूं कि हम लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वो दे पाएंगे, क्योंकि जो सिस्टम को रन करने की भूमिका में बहुत कम लोग होते हैं। हम उस वी आर द ब्लेस्ड सोल्स हु आर इन द पोजिशन टू टेक डिसीजन फॉर रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, उसमें आप लोग भी हम भी हैं, गवर्नमेंट सिस्टम में जो लोग जुड़े हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ लोग हैं, 2-3-5% होंगे, इससे ज्यादा नहीं है, तो हम बाकी जो 90% 95% लोग हैं उनके भविष्य के बारे में, उनके हित के या हित के बारे में फैसले लेते हैं, तो हमें बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है और बहुत बड़ा जिम्मेवारी के साथ हमें काम करना पड़ेगा। यहां पर जो ये आज कार्यशाला रखी गई थी, सम्मेलन रखा गया था, इसके बारे में मैं इतना कहूंगा कि एक बहुत बड़ा एजेंडा प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने आपके सामने रखा है, रोल ऑफ मीडिया फॉर प्रमोटिंग पीस यूनिटी एंड ट्रस्ट इन सोसाइटी। क्योंकि तीन चीजें होंगी तो नेचुरली फिर सब कुछ हो जाएगा। हम न्याय भी दे पाएंगे, हम सौहार्द भी पैदा कर पाएंगे, भाईचारा भी पैदा करेंगे, और पीस, यूनिटी, ट्रस्ट होगा तो हम प्रोग्रेस भी सही डायरेक्शन में जो है कर पाएंगे। लेकिन ये सबसे मुश्किल काम भी है, जितना शब्दों में बयान करना आसान है उतना ही ये ज्यादा मुश्किल भी है। जो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैं समझता हूँ कि जब यहाँ से आप जाएंगे तो अपने आपको एक नई भूमिका में पाएंगे, लेकिन हम ये भी देखते हैं आप भी इस बात से वाकिफ हैं कि बहुत सारी चीजें आपके करने की हैं, बहुत सारी चीजें आपके करने की भी नहीं है। हम कई बार पत्रकार साथियों से भी चर्चा करते हैं, कई बार उनको जो है एजेंडा दिया जाता है, जो वो एक तय एजेंडा होता है कि आपने इस बारे में जो है ये खबर भेजनी है या करनी है। ये भी तय होता है कि कौन सी चीज दिखानी है, कौन सी चीज नहीं दिखानी है, किसको प्रमोट करना है, किसको प्रमोट नहीं करना है, ये भी पहले से ही तय किया जाता है। तो ये मैं समझता हूं एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन बहुत बड़ा दायरा है इसका। इसमें आपको मीडिया जो हाउस ओनर है वहां तक पहुंचने की बात है, जो इसको मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं वहां तक पहुंचने की बात है, और जो हमारे सोशल मीडिया पे या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या सोशल इन्फ्लुएंसर जो हैं उन तक पहुंचने की बात है। हम आज देखते हैं कि जो ये नेक्स्ट जो यंग जनरेशन है, जिसको अल्फा जनरेशन या बीटा जनरेशन या जो हमारी नेक्स्ट अभी जेन जी की बात है, ये तो कुछ और तरह की जो है वो सोच लेके चलते हैं। इनको प्रभावित करने के लिए कुछ और ही टूल जो है वो मुझे लगता है कि जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ज्यादा जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं जितना कि वो जो ये यूट्यूबर और दूसरे इस पे विश्वास करते हैं। तो उनको भी कैसे हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो एक एथिक्स बेस्ड और मॉरल वैल्यूज के साथ जो है मॉरल वैल्यूज इन्फ्यूज करना सभी मीडिया के लोगों से या बाकी जो मीडिया से जुड़े हुए इनडायरेक्टली भी लोग हैं उन तक जो है उनको इस जिम्मेवारी के साथ जोड़ना बहुत बड़ी बात है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय हो। जैसा मैंने कहा कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है, ये स्वयं बनाएं, क्योंकि हमारे ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कोई इस तरह की कोई बाइंडिंग नहीं है कानूनी तौर पे कि आपको ये छापना है ये नहीं छापना है, ये आपके विवेक के ऊपर छापा है। किसी टाइम में एक गिल्ड ऑफ एडिटर्स होती थी, वो तय करती थी, लेकिन अब भी वो ज्यादा इफेक्टिव जो है नहीं दिखती है। हम भी देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो चुनावों के समय जो है कई तरीके की जो है वो मैनिपुलेशन जो है होती है, और उस समय अपनी जो सही बात है उसको भी जनता तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कैसे उसको जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है या जो सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही है, उसमें हमारे पास भी मीडिया के जरिए और कोई जरिया नहीं है। और खास करके जो बड़े ब्रांड हैं उनके ऊपर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, उनका भरोसा बना रहे इसके लिए जो है मैं समझता हूं कि मीडिया के लिए कार्यशाला ये सम्मेलन जो है बहुत अच्छा साबित होगा। एक बिगिनिंग है लेकिन इसकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, और आखिर में मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि हम बड़े विजन को लेकर चलें, और बड़ा विजन ओवरऑल सोसाइटी हमारी बेहतर हो, दुनिया हमारी बेहतर हो, उसी तरफ हम जाएं। ये ठीक कहा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कि जो मीडिया की रिपोर्टिंग है, मीडिया जिस दिशा में जो है दुनिया को ले जाना चाहता है ये आपके ऊपर भी बहुत सारा निर्भर करता है। अभी पीछे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मैं उसके बाद जो था मुझे ब्रिटेन और स्कॉटलैंड जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन इंडिया को लेकर जो थी वो फैलाई गई थी इंटरनेशनल मीडिया द्वारा। हालांकि हम विक्टिम थे लेकिन उनकी नजर में हम जो है गलत साबित हो गए, हमारे साथ गलत हुआ लेकिन हम उसको जो है वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने जो है नहीं रख पाए। तो ये सिर्फ मीडिया इंटरनेशनल मीडिया का रोल था कि हमारे साथ जो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा जो है वो जस्टिस नहीं मिल पाया, जो कि जो सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए थी टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, वो सपोर्ट हमें उस स्तर की नहीं मिली। तो ये सारे इश्यूज ये विद इन कंट्री भी होता है और वर्ल्ड फोरम के ऊपर भी होता है। तो एक बड़ा विजन लेके हम चलें, बड़ा विजन हमारा वर्ल्ड पीस का है। आज किस तरह से कई देश आपस में लड़ रहे हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं, और लड़ाई के बाद भी तो शांति चाहिए, और एक दूसरे को सबको मार देंगे। आज न्यूक्लियर बॉम्ब इतने ज्यादा हैं कि अगर उन सबको जो है एक दूसरे के ऊपर टारगेट बना के जो है वो ट्रिगर कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बचेगा तो कौन किसके ऊपर राज करेगा, किस देश का कहां पे जो है प्रभुत्व रहेगा, वो सब जब आदमी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा फिर। तो ऐसे में जो पीस यूनिटी एंड ट्रस्ट की जो बात कही है, ये बहुत ही बड़े लक्ष्य हैं, और इन लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं समझता हूं कि आप जो है उन ब्लेस्ड सोल्स में हैं जिनको ये जिम्मेवारी जो है ये आपको जो है दी गई है, और आपके माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और हम इन गोल्स को अचीव करने में जो है सफल होंगे। क्योंकि अच्छे काम के लिए सब लोग आगे नहीं होते। हम सब जानते हैं जब देश ने हमारे आजादी की लड़ाई लड़ी उस समय अभी स्वतंत्रता सेनानी कितने थे, बहुत कम लोग थे, लेकिन स्वतंत्रता का लाभ सबको मिला। उसी तरीके से आज भी जो है इन बुराइयों के खिलाफ भी हमने लड़ाई लड़नी है, और स्वतंत्रता सेनानियों की तरह जो ये अच्छाई के अग्रदूत हैं, जो मॉरल वैल्यूज के जो ध्वजवाहक हैं, वो भी कम होंगे, और जो मीडिया में के जरिए जो समाज में प्रकाश फैलाने वाले लोग होंगे ये भी कम होंगे। लेकिन हमें कम होते हुए भी जो है अपना काम, अपना दायित्व पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाना है और बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करना है। और मैं ज्यादा ना बोलता हुआ आप सबका फिर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिन लक्ष्यों को इस सम्मेलन के माध्यम से जिनके ऊपर चर्चा की गई और जो एक्शन प्लान यहां पे जो है आपने अप्रूव किया है, हम उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत विशेष करतल ध्वनि से धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस मीडिया कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाई। अब मैं आमंत्रित करती हूं उन्हें जो है राजयोगी, पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से जो अपना ईश्वरीय सेवा में जीवन दिया है, जिनका जीवन सेवा, समर्पण और संदेश का प्रतीक है। शांति, एकता और विश्वास के जो स्थापक हैं, आदरणीय भ्राता राजयोगी मृत्युंजय भाई जी, आप ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। आपसे अनुरोध है कि आज के इस शुभ अवसर पर हमें प्रेरणाओं से भर दें।
ॐ शांति। परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता शिव बाबा और उनका साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए सम्मुख में उपस्थित समस्त ईश्वरीय परिवार की आत्माओं को याद करते हुए, उनको वंदन करते हुए, नमस्ते करते हुए, इस सभा में हम सबको स्वागत करने वाला बीके प्रहलाद भाई जी, देवेंद्र सिंह मल्लिक साहब जो डीजी रहे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को, डॉक्टर संतोष नायर साहब, मुरारी गुप्ता जी और सरला बहन, हमारा आदरणीय सरला बहन, हमारा आदरणीय भत्ता नारायण भाई साहब और हम सब का प्रिय नेता जी और शिक्षा मंत्री जी राजेश धर्मानी जी और बिन्नी बहन, कुछ समय के बाद में हम सबको योग कराएंगे, वी के अमरचंद जी, हमारा बहुत पुराने मित्र मधुकर भाई जी और साथ साथ में हमारा आदरणीय करुणा भाई जी और अन्य सभी मीडिया विंग के संबंधित भाई बहनों को मैं बहुत 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 दिल से बधाई देता हूँ। मुझे इस दुनिया की तरफ देखने से मुझे क्या लगता है, आर वी मूविंग फॉरवर्ड आर बैकवर्ड आर ऑकवर्ड, किस तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो व्हेन आई लुक एट द ह्यूमन बीइंग्स, देयर इज बैड, मैड एंड सैड इज टर्निंग इनटू डिजास्टर सिचुएशन। ऐसी परिस्थिति में हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं। इस समय में महाभारत युद्ध हो गया और रामायण का युद्ध हो गया और फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, अभी थर्ड वर्ल्ड वार किसी वक्त भी हो सकता है। ऐसा इन्फॉर्मेशन डेली कहीं ना कहीं ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम द्वारा दे रहे, इतना देखने के बाद में व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज के धर्मावलंबी हो, राजनेता हो, विज्ञानी हो, किसी में भी शांति रह नहीं सकते, रह सकते हैं? इसके लिए न शांति है, न एकता है, न विश्वास है। ये अविश्वास का प्रतीक ये सारे चीजें दिखाई दे रहे। ऐसी समय पर ये दुनिया को मार्गदर्शन करना किसके काम है? नेता लोग कर सकते हैं, वो आपस में भिड़े हुए, आपस में धर्म के नाम से, प्रांत के नाम से, भाषा के नाम से, इकोनॉमिक्स के नाम से डिवाइड 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 हो चुके हैं। और दूसरा धर्म नेता है, इन्होंने भी इस देश को, इस विश्व को, इस मानव कुल को जातिवाद, धर्मवाद, इनकी नीति यही हो चुकी है। इसके लिए आत्मवाद नहीं है, परमात्मा प्रेम नहीं है, अनेक विकट संकट पैदा करके समाज में छोड़ा है। वो संस्कार को, श्रेष्ठ संस्कार को नष्ट कर चुके हैं, भ्रष्ट संस्कार को एक नीति बना करके रखा है। ऐसी देखा जाए हर जो वर्ग है इस समाज में, हम लोग विज्ञान को आधार लेकर के बहुत साधन सुविधा बनाया है, परंतु वो साधन सुविधा अभी ऐसा लगता है किस वक्त में बटन प्रेस करो तो सारी दुनिया सर्वनाश हो सकते है। इतना ही नहीं है, जिस प्रकृति को हम लोगों ने भोग 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 करके अनेक वर्षों से अनुभव करते आए हैं, अभी प्रकृति भी मनुष्य को विरोध हो रहा है, प्रकृति भी इतनी संकट पैदा हो रहा है, इसके लिए प्रकृति भी मनुष्य को दुश्मन बन चुकी है। ऐसी परिस्थिति में इस दुनिया को रक्षा करने वाले, नया दुनिया बनाने वाले, नया विश्व को स्थापन करने वाले, शांति सुखमय संसार को बनाने वाले ऐ तो कौन है? कौन है बताइए, कौन हो सकता है? जो इस दुख बंधन की बंधन में आने वाला नहीं है, जो परमपिता परमात्मा है, जिनका जन्म होकर के जहां जन्म होता है उनको कोई ना कोई बंधन आ ही जाएगा। ऐसी परमपिता परमात्मा इस सृष्टिकर्ता जो कहते हैं, आदि देव कहते हैं, परम शिक्षक कहते हैं, परमपिता कहते हैं, और परम सद्गुरु कहते हैं, और ऐसी परमपिता परमात्मा इस समय में इस धरा पर अवतरित होकर के एक नया शिक्षा दे रहे, नया शिक्षा का आंदोलन चल रहा है। इस शिक्षा का बहुत सरल सहज स्वाभाविक होते हैं, मैं कौन हूं। इस शिक्षा का परिभाषा है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा धर्म क्या था, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा कहां जाना है, मैं कहां इस सृष्टि पर राज्य करते थे, इस पुनः राज्य करने की विधि क्या है, हमारा मूल्य क्या है, हमारा दैवी गुण क्या, हमारा शक्ति क्या, इन चीजों को हम भूल चुके हैं, उसको याद दिला रहे हैं इस समय में। इसको ही आत्मज्ञान कहते हैं, इसको मूल्य शिक्षा कहते हैं, इसको राजयोग शिक्षा कहते हैं, इसके लिए परम ईश्वरीय मार्गदर्शन कहते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये शिक्षा मिलता है। तब से उनके अंदर कुछ ही समय के अंतराल में उनके जीवन में परिवर्तन दिखाई देते हैं। फिर मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, हमारा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन दिल्ली में हो रहा था, उन दिनों में तत्कालीन राष्ट्रपति भी थे, एक वीएन नारायण दी देन दी एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम के वीएन नारायण थे, हमारे बहुत दोस्त थे, और उनको दो तीन बार हमारे माउंट आबू ले आने के, उन्होंने एक बात बताया सभा में, आई डेली राइट एडिटोरियल and I traveled with President, Prime Minister and so many dignitaries and so many people comes and meet me. मैं पेपर पढ़ने के बाद में लोग कोई मुझे शांति मिला ऐसा कभी नहीं बोला कोई ने, परंतु आई एम मीटिंग ब्रह्म कुमारी फ्रॉम द लास्ट 25 years. Each time I notice their face is radiating light and might, peace and happiness. उनका पढ़ाई कौन सा है, उनको बड़े किताब नहीं है, बड़े ग्रंथ नहीं है, बड़े बुक नहीं है, इट इज 3 पेज का इतना मुरली है इसका, जिसको मुरली कहते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, जिसको त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने की विधि है। मुरली पढ़कर के उनके जीवन में इतना खुशी मिलता है, प्रकाश मिलता है, शांति मिलता है, शक्ति मिलता है, और ऐसी ज्ञान को हम भूल चुके हैं। इसके लिए उन्हें आई कंग्रेचुलेट ब्रह्म कुमारी। मैं उन्होंने ऐसा लग रहा था उसी टाइम में खुद भी रियलाइज कर रहे हैं, वह रियलाइज किया हुआ बातें बता रहे थे। मैं मीडिया भाई बहनों को ये बात इसके लिए कहता हूँ, आप लोग दुनिया में बहुत किताब पढ़ लिया, बहुत नेताओं का भाषण, धार्मिक ग्रंथों भी देख लिया, बहुत कुछ और भी पढ़ते रहेंगे, परंतु डेली 3 पेज का 15 मिनट भी नहीं होता है, 10 मिनट का मुरली पढ़ने का आदत डाले। यू 10 डेज मुरली पढ़ करके आप वापस अपने आप को चेक कीजिए, आपका जीवन की कितनी कमजोरी ऑटोमेटिकली डिसअपियर होगा। अभी ये युद्ध सब समाप्त हुए, परंतु युद्ध कहाँ हो गया, अभी कहाँ है? मस्तिष्क में युद्ध स्थल बना दिया मस्तिष्क को। क्यों? जहां युद्ध होता है वहां क्या होता है, एक दो को सस्पिशियस नेचर से देखते हैं, विश्वास नहीं होता है, स्नेह नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, शांति नहीं होता है, भय 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 का भूत उधर तांडव नृत्य कर रहा है। इस समय में मनुष्य के मस्तिष्क में छोटे बच्चे देखो, जवान बच्चे देखो, बुढ़ों को देखो और पढ़े लिखे देखो, गरीबों को देखो, बड़े बड़े नेताओं को देखो, सब सबके समय नहीं, समय नहीं है। और स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग एंड स्ट्रेस इज कन्वर्टिंग इनटू डिप्रेशन। इतने अच्छे अच्छे लोग स्ट्रेस की परिभाषा डिप्रेशन में जा रहे। व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ नेगेटिव इम्प्योर अननेसेसरी अनवांटेड थॉट्स इन द कॉन्शियसनेस। मनुष्य के मस्तिष्क में अनावश्यक वेस्ट थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को, अपवित्र संकल्प, अज्ञान की संकल्पों को मन में हम लोगों ने संस्कार बना दिया, स्थान बना दिया। वो मन कैसे शांत स्वरूप बन सकता है, सुखमय जीवन कैसे अनुभव कर सकता है, हिम्मत कैसे रख सकता है, हताश और उदास और निराशवाद हो जाएगा। इसके लिए ये योग जो है परमात्मा इस समय में हमको सिखा। परमात्मा ने कहा था मन मनाभव, तन मनाभव नहीं कहा, धन मनाभव नहीं कहा, मन मनाभव कहा। क्यों? हमारा मन कलुषित है, मन दुखी है, मन अशांत है, मन कमजोर है, मन, इसीलिए कमजोर मन को शक्तिशाली बनाने की विधि समाज में क्या है? वो तो योग है, वो सहज योग है, उसको राजयोग भी कहते हैं। ऐसे योग को जो सीखेगा और अंतर याद कर, बाबा कहते हैं याद करना, इसको अंतर योग भी कहते हैं, अंतर जर्नी कहते हैं, इनवर्ट जर्नी कहते हैं, ऐसी जर्नी करने के सीखेंगे, मैं अशूर करता हूँ आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, पवित्रमय और शक्तिशाली आत्मा बनेंगे। जितना भी समाज के विकृतियां हो, ऐसी समय पर भी अब दुख को सुख में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे परिवर्तन की वेले में हम उपस्थित है, ऐसी संगम का, इसको हम कहते हैं संगम युग, ऐसे संगम युग में परमात्मा का वारिसदार बन करके, वर्षा प्राप्त करके, विजयी आत्मा बन करके, विजयी माला में आने के लिए आत्मा बन करके, पवित्र आत्मा, देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा बनने का विधि इस ईश्वरीय शिक्षा में मिलता है। मैं अधिक समय न लेते हुए आप सबको यही कहेंगे, बी होली, बी योगी, बी सैंपल, बी एग्जाम्पल, बी गुड, डू गुड एंड बी राजयोगी। इतनी ही बात कह करके मैं वाणी को विराम करता हूँ, और आप सबको इतना ही विश्वास करता हूँ, आप सभी ये केवल एक कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, आपका ईश्वरीय परिवार है, ये आध्यात्मिक शिक्षा यूनिवर्सिटी, इट इज एन यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी है। इसकी बातें अभी समय नहीं है, यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला ऑटोमेटिकली साकार और आकार और मूल वतन की अनुभूति कर सकता है। इतना ही नहीं है, आदि अनादि अविनाशी स्थिति को अनुभव कर सकता है और फरिश्ता जीवन बन सकता है, देवता दुनिया स्थापन करने के सहयोगी बन सकता है और आपका तन मन धन समय संकल्प ये सभी एक तो अच्छे कार्य में लगता है तो ऑटोमेटिकली सिद्धि स्वरूप बनता है। ऐसे संकल्प से सिद्धि, वाणी से वरदान और वाचा से वरदान, ऐसी वरदानी मूर्ति बन सकते हैं, ऐसे देवता बन सकते हैं। ऐसा बनने का संकल्प लेके जावे और पुनः परमात्मा का ये महान कार्य चल रहा है उसका सहयोगी बने। ऐसे सहयोगी एक दिन योगी, एक दिन दिव्य रतन के रूप में, पूजनीय रूप में, महान आत्मा के रूप में आप लोगों को अनुभव करेंगे। ऐसे अनुभव करने वाले प्रत्येक आत्मा को, प्रत्येक पत्रकारों को, मीडिया बंधुओं को मैं इतना ही एडवाइस करके, मेरा जीवन का ये अनुभव का सार है, इसीलिए हम सबको पुनः कहेंगे आधा मिनट आप सभी साइलेंस में रहे, उसके बाद में ओम शांति शब्द उच्चारण करके हम समाप्त करेंगे। आधा मिनट अपने आप को साइलेंस में रहे। ॐ शांति, ॐ शांति, ॐ शांति। थैंक यू।
जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे बहुत सुंदर शांति की अनुभूति के लिए। आदरणीय माननीय श्री राजेश धर्मानी जी हमारे बीच से छुट्टी लेकर जा रहे हैं, इसलिए उनको सम्मानित करेंगे हमारे राजयोगी भ्राता मृत्युंजय भाई जी, और उन्हें ईश्वरीय सौगात देकर अभिनंदन करेंगे आदरणीय राजयोगिनी सरला बहन। आप सभी करतल धोनी से धन्यवाद करेंगे। पौने नौ बजे राजेश भाई की युगल को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत सत्कार सम्मान है। आप भी आए, मंच पर आए। बहुत बहुत हर्ष की बात है, खुशी हुई कि आपने यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मीडिया बंधुओं के बीच पधार कर मान रखा, आपने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर परमपिता परमात्मा के इस बेहद घर में पधारे जहां सकारात्मकता, पवित्रता और आध्यात्मिकता की ऊर्जा से भरपूर यह स्थान है शांतिवन। आगे भी इसी तरह आप आते रहिए। बाबा का घर बेहद का घर तो आपका घर, तो अपने ही घर में अपनों का स्वागत, अभिनंदन, सत्कार और सम्मान। बहुत खुशी की बात है, बस कार्यक्रम अंतिम चरण की ओर है। रात्रि को भोजन के पश्चात आप सबके लिए बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है डायमंड हॉल में, और अभी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ईश्वरीय स्मृति, प्रभु स्मृति के साथ बहुत सुंदर शांति की अनुभूति के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ राजयोगिनी बहन डॉक्टर बिन्नी सरीन, जो सीनियर राजयोगा टीचर हैं, रीजनल डायरेक्टर एंड ग्लोबल पीस इनिशिएटिव यूएसए प्रोजेक्ट्स की। आप ग्लोबल पीस इनिशिएटिव लेने वाली रीजनल डायरेक्टर हैं, माउंट आबू से पधारी हैं, विश्व शांति की ज्योति लेकर आई हैं, सद्भावना का दीपक लेकर आई हैं। अनुरोध है बस अब 5 मिनट, सिर्फ आपको 5 मिनट शांति की बहुत सुंदर अनुभूति कराएंगी। आप सभी से अनुरोध है, आप इस शांति की राह पर चलें।
ओम ओम शांति। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, हमारे आदरणीय ऑनरेबल मिनिस्टर जी जो अभी गए, और सम्मानित मंच, तो मैं आपका समय नहीं लेती हूँ। हम अभी कुछ क्षणों के लिए जो आज की थीम है, अंतरात्मा की आवाज, बेहतर भविष्य, बेहतर दुनिया बनाने के लिए, तो ये अंतरात्मा की आवाज जो है उसको सुनने का सबसे श्रेष्ठ साधन है अंतर मन की यात्रा, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। तो आइए हम सभी कुछ क्षणों के लिए और शक्तिशाली स्थिति में बैठ जाएं, स्ट्रेट बैठ जाएं, बैक स्ट्रेट, सभी कुछ क्षणों में शांति के लिए का अनुभव करेंगे। प्रभु प्रेम वो अनुभव है जो जीवन में हारने नहीं देता, घृणा कभी जीतने नहीं देती, इच्छा से कुछ नहीं बदलता है, निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन दृढ़ संकल्प से पूरा जीवन बदल देता है। ये दृढ़ संकल्प आज हम इसको वैलिडिटी सेशन नहीं कहेंगे, लेकिन नई शुरुआत। तो आइए हम सभी कुछ क्षणों के लिए वॉइसेस ऑफ इनर कॉन्शियस, अंतर मन की यात्रा की ओर बढ़ेंगे, अपने मन को रिलैक्स कर ले, शांत कर ले, सुपर स्मार्ट स्पिरिचुअल स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन, मन को भीतर की ओर मोड़ेंगे, अपने आप को एक शक्तिशाली संकल्प दे, वो एम आई, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मीडिया लीडर हूं, विश्व को बदलने की मेरे भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति है। स्टेप वन इज सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म जागृति, आत्मज्ञान, अपने आप को जानना ही अंतर आत्मा की आवाज है। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्व सम्मान, आत्मा की शक्तियों का सम्मान करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म निरीक्षण ही मेडिटेशन है। मीडिया मीन्स मेडिटेटिव पावर, आत्मचिंतन, अपनी शक्तियों को पहचानना, यही स्मार्ट स्टेप हमें ले जाता है सेल्फ एम्पावरमेंट, आत्म सशक्तिकरण, जो कि ध्यान और मेडिटेशन की अनुपम देन है, जिसे आप यहां से लेकर जाएंगे एक गिफ्ट की तरह। आइए इन मधुर क्षणों में सर्वशक्तिवान परमात्मा से जुड़ते हुए दृढ़ संकल्प कर ले, उनसे शक्तियों को प्राप्त करते चले जाएं। एक बहुत बड़ी शक्ति जो AI को कंट्रोल करती है, द सुपर पावर SI, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जो आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को परिवर्तन करके विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी अनुभूति के साथ, इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम आज से मीडिया लीडर बनकर विश्व में शांति, एकता, भाईचारा, सद्भावना की मशाल यहां से लेकर जाएंगे और विश्व को रोशन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम
बहुत सुंदर शांति की अनुभूति के लिए डॉक्टर बिन्नी बहन का धन्यवाद। आपका विधिवत धन्यवाद ज्ञापित करने अत्यंत हर्ष की बात है कि हमारे साथ हैं आगरा से पधारे मीडिया विंग के सब जोनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजयोगी भ्राता अमरचंद भाई जी, आपका स्वागत है।
ओम शांति। सम्माननीय मंच पर विराजमान सम्माननीय और माननीय महानुभाव और सभा में उपस्थित हमारे भारत और नेपाल से पधारे हुए सम्माननीय मीडिया मनीषी भाई और बहनें, एक लाइन है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ये बहुत सुंदर टॉपिक था कि आत्मा की आवाज। अब आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, धर्मात्मा के बारे में, महात्मा के बारे में एक्चुअली ये पढ़ाई है। आपसे मैं ये बात क्यों शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ आपके लिए कोई उपदेश नहीं है, यहाँ कोई गुरुजी नहीं है, यहाँ कोई शिष्य नहीं है। एक बात है जो कहनी है, जो अंतरतम की बात है कि आज हर व्यक्ति दुनिया में शांति चाहता है और सुख चाहता है। संसार में एक व्यक्ति आप निकाल करके नहीं ला सकते जिसे सुख नहीं चाहिए और शांति नहीं चाहिए। लेकिन शांति कहाँ मिलेगी, सुख कहाँ मिलेगा, उसका उनको पता नहीं है। ज्ञान दूर इसका ज्ञान नहीं है, और प्राप्त भी करना चाहते हैं तो क्रिया भिन्न है, फिर हमारे मन की इच्छा ये अधूरी रह जाती है। अब ज्ञान भी हो तो मैं एक प्रामाणिक बात आपको बताता हूँ, जैसे हमारे भाई जी कह रहे थे रामायण के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता, गीता में भगवान वाच, ये बात भगवान ने कही। आत्मा की आवाज़ सुनो न सुनो, लेकिन परमात्मा की आवाज़ तो सुननी चाहिए। लोग अवॉइड करते हैं भाई पापात्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, साधु महात्माओं को, लेकिन भगवान की बात तो सुननी चाहिए। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने ये कहा कि तू सारे दुखों से दूर, प्रमाणिक बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मास। हे बच्चे तू क्यों परेशान होता है, तू शोक मत कर, मैं तेरी सारी निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए मैं ही कर सकता हूँ, दुनिया में तेरा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जिनके साथ तू जुड़ा हुआ है उनके अंदर वो निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं, तो उसे मिले ही कहाँ से। ये बिल्कुल बात सिंपल है, आप एक सब्जी की ठेल पर चले जाएं और उससे कहें भाई 1 मीटर कपड़ा दे देना मुझे, वो क्या कहेगा आपसे, अरे भाई साहब कपड़े की दुकान पर जाओ, मेरे पास आलू टमाटर लेने हो तो आपको ले जाओ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो जहां जिसका स्रोत है, हम सोचते हैं हमारे मित्र संबंधी, हमारा धन मान प्रतिष्ठा पद पैसा, ये हमको सुख देगा, ये हमको शांति देगा। जब तक हम शांति के स्रोत के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान के वाक्य हैं उसमें बहुत सुंदर बातें कही गई हैं। जैसे शुद्ध सात्विक भोजन की बात है, क्या बात है उसमें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रत्यक्ष। भगवान जी का भोजन क्या है, उसमें भोजन की बात कही है, पत्र पुष्प फल और जल। जल किसके ऊपर चढ़ाते हैं हम, देवादेव महादेव के ऊपर, किसी देवी देवता के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप प्रबुद्ध जन है, ये रिसर्च का विषय है कि सुप्रीम कौन है, वो कोई जड़ चीज है क्या, कहीं बैठा हुआ है क्या। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप यहां आए हैं अभी, मैं समझता हूं ये विषय आत्मा की आवाज का, परमात्मा की आवाज का, ये बहुत गूढ़ विषय है तो बहुत सहज, लेकिन आप अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, भले पेपर में न छापें, किसी चैनल में न चलाएं, आप आपस में शेयर करें, तो ज्ञान के बिना न आत्मा तृप्त होती है और न संतुष्ट होती है, न पवित्र होती है। आप अपने शरीर को मिट्टी साबुन से किसी साफ कर सकते हैं, आत्मा को, मन को किससे साफ कर, मन को साफ करने के लिए कोई दवाई बनी नहीं है। भगवान ने कहा, मन मनाभव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सुक्त आत्मानम, तू जब तक मेरी याद नहीं करेगा तब तक तेरे अंदर से नहीं जाएगी। ये तो बात ज्ञान की हो गई, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा हमारे आज की सभा के चीफ गेस्ट माननीय भ्राता राजेश धर्मानी जी, उनकी सीट खाली है, उन सीट के लिए माननीय मंत्री तकनीकी टेक्निकल हिमाचल प्रदेश, आप अपने व्यस्त समय से निकाल के आए, वो तो गए यहाँ से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वैलिडिक्ट्री सेशन के अध्यक्ष चेयरपर्सन, उनकी चेयर के लिए भी बहुत धन्यवाद। आप सेक्रेटरी जनरल इसके हमारी संस्था के, अच्छा स्वागत दी, ठीक है, ओके ओके। मुझे आदेश हुआ है कि मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करूं, आभार करूं, मैनी मैनी थैंक्स करूं और इसको विराम दूं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों से अनुरोध है, मंचासीन मेहमानों को ईश्वरीय सौगात से, ईश्वरीय सौगात भेंट से सम्मानित करें। राजयोगिनी सरला दीदी जी से अनुरोध है, मंचासीन मेहमानों का सत्कार करें। बहनों से अनुरोध है, ईश्वरीय सौगात दें। हम सब एक मिनट साइलेंस में फिर इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। आप सभी भोजन के लिए जाएंगे, तत्पश्चात आप कल्चरल प्रोग्राम के लिए डायमंड हॉल में पहुंचेंगे। कल सुबह राजयोग मेडिटेशन सत्र इसी हॉल में रहेगा। 6:30 से 7 आपका फिजिकल एक्सरसाइज होगा और 7 से 8 आपका राजयोग मेडिटेशन सत्र रहेगा, तो सभी जरूर अटेंड करेंगे। ओम शांति। थैंक यू।
फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कृष्ण कन्हैया का राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। तीरों से आकाश भरा